आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जमहूरियत का कदीम और मुस्तहकम कल्चर रहा है और इत्तेफाक राय, खुले मुजाकरात और आजादाना तबादला ख्याल उसकी तारीफ में हमेशा शामिल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो सरकारी कामकाज से वाबस्ता अपनी सभी शाखों को इतवार 31 मार्च को खुला रखें। आसाम पुलिस की खसूसी टास्क फोर्स ने भारत में दाइश के सरगना हारिस फारूकी को धुबरी से गिरफ्तार किया है। हांगकांग जाने वाले भारतीय शहरियों के लिए वहां पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी जारी की गई है। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी इस साल के पेरिस ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीम में शिरकत नहीं करेंगे। और बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में जारी स्विस ओपन के मर्दों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जमहूरियत का कदीम और मुस्तहकम कल्चर रहा है। कल शाम सियोल में जनूबी कोरिया के जेर एहतमाम समिट फॉर डेमोक्रेसी में वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इत्तेफाक राय कायम करना, खुले मुजाकरात और आजादाना तबादला ख्याल भारत की तारीख में हमेशा शामिल रहे हैं।
इंडिया हैज एन एंशिएंट एंड अनब्रोकन कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी। इट हैज बीन द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कॉन्सेंसस बिल्डिंग, ओपन डायलॉग एंड फ्री डिस्कशन हैव रेजोनेटेड थ्रू आउट इंडियाज हिस्ट्री। दैट इज व्हाई my fellow citizens consider India to be the mother of democracy. Over the last decade, India has moved forward with the mantra of sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas.
वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि अब से चंद हफ्तों बाद दुनिया भारत में जमहूरियत के सबसे बड़े फेस्टिवल का मुशाहिदा करेगी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि तकरीबन 1 अरब वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा चुनाव अमल होगा। उन्होंने कहा कि भारत के आवाम एक बार फिर जमहूरियत में अपने एतमाद का इजहार करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि इसके लिए जिम्मेदार अनासिर को सबक सिखाता है। नई दिल्ली में भारत राइजिंग समिट में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को खौफजदा किया करते थे वो अब कहीं नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी मानती है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि दर्जाबंदी से मुतालिक बड़ी एजेंसियों और इक्तिसादी माहिरीन को दरअसल भारत के ताल्लुक से पूरा यकीन है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत में किस तरह बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं।
आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन, आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भूटान का दो रोजा सरकारी दौरा जो आज से शुरू हो रहा था, पैरो हवाई अड्डे पर मौसम के नामुआफिक हालात के सबब मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने कहा है कि सिफारती चैनल्स के जरिए दोनों ही जानिब से नई तारीखें तय की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने मरकज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों से कहा है कि वो रेलवेज और हवाई अड्डों जैसी सरकारी इमलाक से उन सभी सियासी पोस्टर्स को बिला ताखीर हटाएं जिनके लिए किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। अपने मुरासले में चुनाव कमीशन ने कहा है कि उसे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं जिनमें ये इल्जाम लगाया गया है कि मुल्क में कई मकामात पर सियासी इश्तिहारात गैर कानूनी तरीके से अब भी लगाए जा रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने अपनी हिदायत पर अमल न किए जाने या जुज़वी तौर पर अमल करने का संगीन नोटिस लिया है। उसने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों को ये हिदायत दी है कि सभी गैर कानूनी सियासी इश्तिहारात फौरी तौर से हटाए जाएं। کمیشن نے اس سلسلے میں کارروائی رپورٹ آج شام 5 بجے تک پیش کرنے کو کہا ہے۔ پنجاب میں لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے ووٹنگ 7 اور آخری مرحلے میں 1 جون کو منعقد ہوگی۔ اس چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن 7 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ ریاست میں ووٹوں کی کل تعداد 2,12,00,000 سے زیادہ ہے، جن میں 4,90,000 وہ ووٹر بھی شامل ہیں جو پہلی بار ووٹ دیں گے۔ ایک رپورٹ۔
پنجاب میں پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں کی کل تعداد لگ بھگ 4,90,000 ہے، جن کی عمر 18 سے 19 سال کے درمیان ہے۔ ان میں سے سرحدی لوک سبھا حلقے گرداسپور میں نوجوان ووٹروں کی تعداد سب سے زیادہ 48,000، جبکہ لدھیانہ لوک سبھا حلقے میں اس زمرے کے ووٹروں کی تعداد نسبتاً کچھ کم، تقریباً 31,000 ہے۔ بھارت کا انتخابی کمیشن بوتھ سطح کے افسروں کے ذریعے سرٹیفکیٹ دے کر ان ووٹروں، بالخصوص پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں کو اعزاز سے نوازے گا۔ اسی طرح 85 سال سے زیادہ کی عمر کے ووٹروں کی تعداد بھی 2,55,000 سے زیادہ ہے، جس میں 5,100 سے زیادہ ووٹر 100 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں۔ ان سبھی معمر افراد کو اپنے گھر سے ووٹ ڈالنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ جالندھر سے شیشو شرما شانتل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں قیم احمد۔
پوسٹ گریجویٹ نیٹ امتحان اب 23 جون کو کرایا جائے گا۔ پہلے اس کے لیے 7 جولائی کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اطلاع نامے کے مطابق نیٹ پی جی کے لیے اہل ہونے کی خاطر انٹرنشپ مکمل کرنے کی کٹ آف تاریخ 15 اگست ہی رہے گی۔ نتیجوں کا اعلان 15 جولائی کو کیا جائے گا، جبکہ تعلیمی سال کا آغاز 16 ستمبر کو ہوگا۔ ریزرو بینک نے سبھی بینکوں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری کام کاج سے وابستہ اپنی سبھی شاخوں کو اتوار 31 مارچ کو کھلا رکھیں۔ اس سے قبل سرکار نے یہ کہا تھا کہ سرکاری رقومات کی ادائیگی اور رقومات موصول ہونے سے وابستہ سبھی بینکوں کو لین دین کے لیے 31 مارچ کو بھی کھلا رکھا جائے، تاکہ سبھی متعلقہ سرکاری لین دین موجودہ مالی سال کے ہی گوشوارے میں شامل رہے۔ ریزرو بینک نے بینکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 31 مارچ اتوار کو بینکاری خدمات دستیاب ہونے کے تعلق سے مناسب تشہیر کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
لوک نرنئے 2024
عام چناؤں پر وشیش کاریکرم
ہر شام 7 بجے سے اور پنہ پرسارن رات 9:30 بجے سے آکاشوانی گولڈ پر۔
چناوی گتیویدھیوں کی خبر، دیش کے ہر انچل پر نظر،
وشیشجوں کی رائے اور وشلیشن،
دنیا کے سب سے بڑے لوک تنتر کے چناوی پرو میں سنیے
لوک پرسارک کے ساتھ لوک نرنئے 2024۔
آسام پولیس کی خصوصی ٹاسک فورس نے بھارت میں داعش کے سربراہ حارث فاروقی کو کل دھوبری میں ایک اور کارندے کے ساتھ پکڑا ہے۔ اسے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔ آسام پولیس کے ترجمان کے مطابق مرکزی ایجنسیوں کی جانب سے فراہم کی گئی جانکاری پر کارروائی کرتے ہوئے خصوصی ٹاسک فورس نے ان دونوں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ بین الاقوامی سرحد پار کر کے ملک میں چوری چھپے داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو پوچھ تاچھ کے لیے گوہاٹی لے جایا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ان دونوں کو قومی جانچ ایجنسی این آئی اے کے حوالے کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ میں بھارت کے قونصل جنرل نے ہانگ کانگ جانے والے بھارتی شہریوں کے لیے وہاں پہنچنے سے پہلے کی رجسٹریشن ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی خطے کے 14 دن کے دورے کے خواہش مند بھارتی شہریوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے کے رجسٹریشن کے لیے آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ یہ رجسٹریشن 6 مہینے کے لیے قابل قبول ہوگا اور اس دوران بھارتی شہری کئی بار وہاں کا دورہ کر سکیں گے۔ ہانگ کانگ میں قونصل جنرل نے وہاں آنے والے بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی خطے کی سرکار کے ضابطوں پر عمل کریں، تاکہ انہیں کسی طرح کی پریشانی کا امکان کم سے کم رہے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کے رجسٹریشن کا ہو جانا متعلقہ شخص کے وہاں داخل ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ قونصل جنرل نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جب ہانگ کانگ کے امیگریشن محکمے نے بعض ضابطوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت، انسانی ہمدردی کی امداد اور قیام امن فارمولہ میٹنگوں میں سرگرم شرکت کے لیے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب زیلنسکی نے یہ بات کہی ہے۔ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद उनका ये बयान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फरोग के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। जनाब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन भारत के साथ तिजारत और इक्तिसादी रिश्तों को मुस्तहकम बनाने का ख्वाहिशमंद है, खासतौर पर ज़राई बरामदात, एविएशन, इश्तराक और दवासाजी, नीज सनअती सामान की तिजारत के शोबों में वो ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन चाहता है कि भारतीय तलबा यूक्रेन के तालीमी इदारों में वापस आ जाएं। इस गुफ्तगू के दौरान जनाब मोदी ने कयाम अम की सभी कोशिशों और मौजूदा महाजराई के जल्द खात्मे के लिए भारत की तरफ से ठोस हिमायत से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि भारत अवाम की बहबूद का ख्याल रखते हुए इंसानी हमदर्दी की इमदाद फराहम करता रहेगा। इंडोनेशिया के जनरल इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के अगले सदर के तौर पर प्रबो सुबियानतो के नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कमीशन ने बताया है कि 72 साल सदर जनरल को सदारती इंतखाबात में 58.59% वोट मिले। इनके हरीफों को अनीस बसवेदन को महज 24.95% जबकि एक और उम्मीदवार को 16.46% वोट मिले। कमीशन ने अगले नायब सदर के तौर पर मौजूदा सदर जोको विदोदो के बेटे गिब्रान रासा के नाम का भी ऐलान किया है। मुंतखब सदर और नायब सदर 20 अक्टूबर 2024 को ओहदा संभालेंगे। 14 फरवरी 2024 को पोलिंग हुई थी। पाकिस्तान में कल बलूचिस्तान सूबे में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हुई शदीद झड़प में 8 मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अफराद हलाक हो गए। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब भारी हथियारों से लैस मिलिटेंटों ने गवादर कॉम्प्लेक्स में जबरन दाखिल होने की कोशिश की और गोलियां चलाना शुरू कर दी और वहां धमाका होने की इत्तला मिली है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने शुमाल व शहर भारत, दिल्ली, हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस महीने की 13 तारीख तक बारिश और गरज चमक के हालात में तेजी आने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड में आज तक गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं औसत बारिश की भी पेशगोई की है। हमने IMD के सीनियर साइंसदान RK जयरामनी से बातचीत की।
30 तारीख ऐसी जिसके कारण से जो हमारा पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें बर्फबारी होगा। और अभी जो तापमान का अगर बात करें, तापमान जो है बहुत ज्यादा गिरा गया है।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने ऐलान किया है कि रूस और बेलारूस के एथलीट को पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब में मुल्कों की परेड में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्विस ओपन बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज कल रात सीधे सेटों में मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले राउंड में जापान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबार ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की खबर को अपनी शेरसुर्खी बनाया है। अखबार मिलाद की शेरसुर्खी है, लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी, 102 सीटों के लिए नामजदगी का अमल शुरू, 19 अप्रैल को होगी पोलिंग। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि मुल्क में 45% से ज्यादा स्टार्टअप खवातीन के जेर क्यादत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ से खिताब किया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, फौज के टैंकों के लिए ताकतवर देसी इंजन का कामयाब तजुर्बा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, पुतिन को वजीर आजम मोदी का टेलीफोन, इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी।
आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जमहूरियत का कदीम और मुस्तहकम कल्चर रहा है और इत्तेफाक राय, खुले मुजाकरात और आजादाना तबादला ख्याल उसकी तारीफ में हमेशा शामिल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो सरकारी कामकाज से वाबस्ता अपनी सभी शाखों को इतवार 31 मार्च को खुला रखें। आसाम पुलिस की खसूसी टास्क फोर्स ने भारत में दाइश के सरगना हारिस फारूकी को धुबरी से गिरफ्तार किया है। हांगकांग जाने वाले भारतीय शहरियों के लिए वहां पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी जारी की गई है। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी इस साल के पेरिस ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज स्विट्जरलैंड के शहर बेसिल में जारी स्विस ओपन के मर्दों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।